चारित्र मोक्षम ना लेक्चर नंबर 18 में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, सिर घूम गया अपना। कहते उपशम श्रेणी चढ़ना आसान है पर पढ़ना बहुत कठिन है। क्योंकि इसका अर्थ क्या है, विकल्प करना बहुत कठिन है और अपने स्वरूप में गुप्त होना बहुत आसान है। हमने क्या क्या देखा, देखो सातवें गुणस्थान से तीन करण परिणाम मान ले। पहले अधर करण हुआ सातवें गुणस्थान में, अपूर्व करण गुणस्थान, उसका नाम भी अपूर्व करण है। अनिवृत्ति करण, उसमें होने वाले सारे वो चार चार अतिशय वहां तो होते ही चलते हैं। अनिवृत्ति करण के संख्या बहुभाग बीतने पर क्या हुआ था उसकी बात हमने शुरू की थी, तो उसमें स्थितिबंध बहुत घटते गया था जिसको हमने स्थितिबंधावकरण देखा। बंध सत्व नहीं, तो पहले अंत कोड़ा कोड़ी से अंत कोड़ी सागर हुआ, फिर वो तो असंगी के समान, फिर चतुरिंद्री के समान, घटते 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 पल्ले तक आ गया। पल्ले के बाद और उसका प्रमाण घटने का जो भी बदल गया वो दुरागम दृष्टि तक आ गया। उसके बाद और घटते चला गया, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण असंख्यात शंका होने लगा। उसके बाद वो क्रमकरण हुआ था उल्टा पुलटा सारा, मोह सबसे अल्प हुआ था उससे असंख्यात बना ज्ञानावरणादि तीन, उससे असंख्यात बना नाम गोत्र, उससे विशेष अधिक वेद। जब ये पोजीशन आई क्रमकरण के अंत में तब जाके असंख्यात समय प्रबद्ध की उदीर्ण होंगे। उसके बाद भी और ऐसे ही संख्यात हजार स्थिति बंधावसरण होते होते उसके बाद क्या हुआ था, हाँ वो क्रमकरण की बात तो देशघातीकरण हुआ वो संख्यात हजार स्थिति बंधावसरण की बात। उसमें जो देशघाती प्रकृतियां अब तक सर्वघाती देशघाती द्विस्थानगत बन गई, अब वो मात्र देशघाती एक स्थान वाली नहीं, यहाँ नहीं एक स्थान वाली, यहाँ नहीं, यहाँ पर केवल वो देशघाती रूप से बन रही। एक स्थान वाली बात मोहनीय में अंतर के बाद और बाकी में उसके भी बाद। देखो अब नहीं समझे, देशघातीकरण तक देखा ना हमने, देशघातीकरण में वो मन परे ज्ञानावरण दानांतराय वगैरह क्रम से एक एक प्रकृतियां वो देशघाती रूप से बनने लगी, वहां तक बात आ गई। उसके बाद क्या हुआ था, अंतर्गत यहाँ 21 प्रकृतियां है, मोहनी की 21 चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियां है, उसमें दो ही का उदय है, एक कोई तो वेद और एक कोई तो संचलन का, एक कोई कषाय। हमने मान लिया है पुरुष वेद और संगलन क्रोध सहित चढ़ने वाला जीव है, यानी वेद का उदय तो जन्म से वही उसी वेद से उदय उसका उदय हो रहा था, परंतु क्रोध मान माया लोग छठे सातवें में तो पलट पलट रहे थे, परंतु जब से श्रेणी आरंभ की तब से क्रोध का ही उदय चल रहा था। अब जब अंतर किया तो क्रोध की प्रथम स्थिति कितनी की उसने, बीच में अंतर कर दिया तो जितना क्रोध वेद काल है प्लस अवधि, पूरी जो हमने सूक्ष्म सांप्रदाय तक इतनी जो और उतनी गुणश्रेणी बनाई थी और केवल टॉप नहीं गया था, कितनी प्रथम स्थिति, जितना क्रोध वेदक काल है प्लस आवली, इतने क्रोध की प्रथम स्थिति और जितना पुरुष वेद का वेदक काल है उसकी पुरुष वेद की प्रथम स्थिति, यानी पुरुष वेद की थोड़ी ही छोटा अंतर्मुक्त है, क्रोध का जरा बड़ा अंतर्मुक्त है। वो समान वगैरह बात बताई वहाँ पर, वो हमने दोपहर में उसकी चर्चा की थी। उसके बाद क्या होता है बाकी कर्मों में क्या हो रहा है, जो अनुदेव केवल आवली प्रमाण नीचे की जिसको प्रथम स्थिति कहते वो है, वो भी अभी जाने वाली है क्योंकि उदय रूप कषाय के साथ वो उदय में क्यों संक्रमण के द्वारा नष्ट होने लगे। बाकी सभी उदय यानी द्वितीय स्थिति में अनुदय रूप से पड़ी है, अभी किसी का उपशम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। ये पोजीशन है अभी अंतरकरण के समय तक। अब अंतर करने का कार्य एक अंतर्मुख में पूरा हो गया, कहाँ डाला वो सब हमने बहुत मेहनत करके जान लिया। अब पोजीशन क्या है, उदय किसका है, पुरुष वेद का है और संज्वलन क्रोध का है, उसका एक एक निषेक नीचे से उदय में आता रहेगा। अब भी क्या पोजीशन है, अंतर्मूल प्रमाण स्थितियां है दोनों की और दोनों का ही द्रव्य ऊपर से अपकर्षण होकर जिसको आगाल कहते हैं नीचे आकर मिलेगा, और नीचे से भी उदयावली के ऊपर जितने स्थिति उसमें से कुछ परमाणु बंधने वाले के साथ ऊपर चले जाएंगे, उसको प्रत्यागत। ये कब तक चलेगा, जब तक दो आवली शेष है, पर उस समय तक और क्या होगा। तो कहते हैं यहाँ पर अंतरकरण के इमीडिएट नेक्स्ट समय से लेकर उपशमने का कार्य चालू है। सर्वप्रथम में प्रथम उपशमित होने वाली प्रकृति कौन सी है, तो नपुसक से, तो नपुसक वेद का उपशम चल जाएगा। तो उपशम चलता है तो क्या होता है, तो वहाँ पर पहले समय में एक कार्य दूसरे समय असंख्यात गुणा क्रम से उपशमित होने लगता है। यहाँ सात करण भी शुरू हुए थे, एट ए टाइम सात करण शुरू हुए थे। हाँ, मोहनीय का यानी यहाँ जो बंध होता है वो एक स्थानीय लतारूप एक स्थानीय बंध भी और उदय भी यहाँ शुरू हुआ। और क्या बात हुई थी यहाँ पर, अनुपूर्वी संक्रमण पांचवें पॉइंट पर बताया था, उसके पहले क्या क्या बताया था, मोहनीय का स्थिति बंध है यहाँ संख्यात हजार, वहाँ संख्यात लिखा है, संख्यात हजार वर्षों का यहाँ पर होने लगता है। अनुपूर्वी संक्रमण यहाँ से शुरू, यानी कौन सा कर्म किसमें संक्रमित होगा उसकी बात यहाँ नक्की हो जाती है, उसका ये उपशम यहाँ चालू हो जाएगा। और कौन सी सातवीं बात बताई थी, हाँ संज्वलन लोक का किसी में नहीं होगा, वो नपुंसक वेद का हाँ बंद अवली बात उदीर्णा होती है, ये भी वहाँ करण होता है, ये इतनी बातें वहाँ शुरू हो जाती है। तो ये सब चलती ही रहेगी ऐसे। अब उसमें नपुंसक वेद उदीर्णा होती रहती है, कर्म बनने के बाद उसके बनने के बाद पहले आवली के बाद उदीर्णा तो नियम से होती थी, अब इसके लिए छह आवली लगे, उसके पहले उदीर्णा नहीं होगी, ये यहाँ कहना चाहते हैं। तो उसमें भी नपुंसक वेद का उपशम होता है। तो उपशम के काल में और क्या क्या हो रहा है, संक्रमण भी होता है, पुरुष वेद में संक्रमण होगा, नपुंसक वेद के कुछ परमाणु पुरुष वेद में चले जाएंगे, यहाँ पुरुष वेद का उदय भी है और पुरुष वेद की उदीर्णा भी है। हमने अल्प बहुत तो देखा था पुरुष वेद के उदीर्णा द्रव्य से उदय ज्यादा है असंख्यात गुना, उससे नपुंसक वेद का संक्रमण असंख्यात गुना है और उससे उसका उपशमित होने वाली फाली असंख्यात गुना है। तो इस तरह से उपशम और संक्रमण होते होते पूरा उपशमित हो जाएगा। ये सब कार्य कहाँ चल रहा है, द्वितीय स्थिति में चल रहा है। प्रथम स्थिति में तो पुरुष वेद का उदय चल रहा है, क्रोध का उदय चल रहा है और ये द्वितीय स्थिति के नपुंसक वेद उपशमित हो गए। अब नंबर है स्त्री वेद का, वहाँ के जो द्वितीय स्थिति में स्त्री वेद के परमाणु ये अभिषेक सारे पड़े हैं वो भी क्रम से एक एक फाली करके वो भी उपशमित हो गए, उसका भी संक्रमण हो गया, वो सारे प्रोसेस ऐसे उसमें भी चले। तो स्त्री वेद का उपशमने का काल पूरा। अब पुरुष वेद और हास्यादि छह इनका उपशम, हाँ स्त्री वेद के संख्यात्वा भाग उपशमी का वो काल का संख्यात्वा भाग जाने पर ज्ञानावरणादि जो तीन है उनका स्थिति बंध है वो संख्यात हजार वर्षों का चालू होता है। नाम गोत्र का अभी भी असंख्यात वर्षों का चालू होता है, वो सात नौ कषाय के उपशम काल में उसका असंख्यात हजार वर्ष होने वाला है। तो हमने ये बात देखी कि स्त्री वेद के उपशमना काल में ये होते हैं, तो स्त्री वेद का उपशम कंप्लीट होगा, फिर पुरुष वेद और छह नौकशाएं इनका उपशम चलेगा, तो उसमें भी ऐसी बातें होगी। यहाँ पुरुष वेद का जब तक उदय है तब तक उनका उपशमने का कार्य चल रहा है, और उनका उपशमने का कार्य चल रहा है तब जाके वो, तो नाम गोत्र उसकी भी हमने देखी थी ना, स्त्री वेद के उपशम के काल में ज्ञानावरणादि का संख्या 1000 वर्ष हुआ था, और सात नौ कषाय के उपशम के काल के अंदर में नाम गोत्र और वेदनी का संख्या 1000 वर्ष का संकीर्ण होता है। उसी काल में पुरुष वेद के अंतिम समय ने, पुरुष वेद के उदय के अंतिम समय तक नया बंध भी हो रहा, तो बाकी तो सारे उपशमित हो गए, एक समय कम दो आगे, इतने जो नए समय प्रबत है, नवक समय प्रबत कहते हैं, उनका उपशम होना बाकी है, किसी के एक फाली बाकी, किसी के दो फाली बाकी, किसी की इस तरह से वहाँ वो बाकी है, वो उसका उपशम बाद में होगा, जो क्रोध के उपशम काल में उसका भी उपशम बाद में होगा। अब यहाँ पुरुष वेद का तो उदय होकर वो सारे उसके निषेक नष्ट हो गए, अब क्रोध के बाकी, क्रोध का अभी जो जितना उर्वरित शेष काल बाकी है, अब पुरुष वेद का तो नवक समय प्रबंध पड़ा है, वो इसके साथ अभी उपशमित होगा। अब जो क्रोध का, अब यहाँ पुरुष वेद का अंतिम बंध कितना है, 16 वर्ष, उसी वहाँ पर संज्वलन क्रोधमान माया लोग 32 वर्ष, यहाँ बाद में अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त प्रमाण कटौती होती चली जाएगी इसके बाद। अब इसके बाद यानी पुरुष वेद और जो छह नौकशाय के बाद तीन जो क्रोध है उसको उपशमनाय के कार्य चलेगा, उसमें क्या होगा, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जो क्रोध है वो संज्वलन क्रोध में संक्रमित भी होगा, अपने रूप से उपशमित भी होगा, संज्वलन क्रोध भी अपने रूप से उपशमित हो रहा है, और उसका कुछ संक्रमण भी चल रहा है, ये सभी एट ए टाइम बातें चल रही हैं। ऐसे होते होते तीन आवरी काल बाकी रहा, तब तक ऐसे पोजीशन है, दो क्रोध अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोध में जा रहे हैं, संज्वलन क्रोध संज्वलन मान में जा रहा है, जब तीन आवली शेष रहती है तब जाके वो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान वो डायरेक्ट मान में चले जाते हैं, और जो अंतिम जो उपशमनावली है वहाँ तक वो सारा अंतिम फाली जो है उसका भी उपशमने का कार्य हो जाता है। अब उच्चिष्टावली बाकी रहती है, उच्चिष्टावली बाकी रहती है, वो अभी क्रोध रूप से उदय में आने वाली नहीं है, उसका एक एक निषेक, अब यहाँ मान की रचना भी होगी और मान का उदय भी होगा, और उस उदय के साथ ये क्रोध के उच्चिष्टावली का एक एक निषेक उस रूप होकर उदय में आएगा, उसको कहेंगे द्व्यूह का संक्रमण। यानी यहाँ मान के जो परमाणु द्वितीय स्थिति में जो सारे निषेक पड़े थे उसमें से परमाणु नीचे आकर यानी अंतर को छोड़कर वहाँ ये जो गुणित प्रमाण जैसे गुण श्रेणी जैसी जो है उनकी रचना तैयार होगी, निषेक नए तैयार हो जाए, इसको कहेंगे मान की प्रथम स्थिति का कारक हुआ, और उसी का उदय चलेगा तो उसका वेदक हुआ। ये हमें तो यहाँ के शब्दों का अर्थ समझना है, यानी नई स्थिति वहाँ तैयार हुई, निषेक रचना हो गई जो नहीं थी, और उसमें भी वो उसका ये सब चलेगा, उपशम संक्रमण वो सब चलेगा तीनों का, जैसे वहाँ बात बताई थी क्रोध में वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर भी चलेगा। तो जो होता है वो बताते हैं, केवली ने भी ऐसा ही जाना है और ऐसा ही बताया है कि कुछ थोड़े परमाणु संक्रमित हो रहे हैं और कुछ थोड़े बहुत सारे उपशमित हो रहे हैं, उपशमित हो रहे हैं तो उसका उदय नहीं आएगा, और ये सहज विधि है कि वो अन्य रूप से होकर थोड़े परमाणु का संक्रमण तो चलता रहता है, ऐसे भी चलता रहता है, यहाँ अनुपूर्वी रूप से चल रहा है, पहले तो उल्टा पुल्टा कैसे भी हो रहा था, अब एक ही डायरेक्शन में वन वे वाला उसका जो कौन सा किस में संक्रमित होगा ये निश्चित है, इस तरह से ये विशेष यहाँ प्रोसेसेस हो रहे हैं।
उपशमित जो दो हो गए, एक तो जिसका उदय है उसका ऊपर उपशमित करेगा, और पीछे वाले की उच्चिष्ट अपना जो जो लास्ट काल में बन जाता उसको ऊपर उपशमित करेगा।
देखो जिसको हम नवक समय प्रबद्ध कहते हैं, नवक समय प्रबद्ध, जब क्रोध के नवक समय प्रबद्ध मान का जब उदय चालू हो गया और मान का उपशम चालू हो गया, उस समय वो नवक समय प्रबद्ध उसके भी उपशम हो गए। वो तो एक समय कम दो अवली में तो उपशम का वो पूरा हो जाएगा, परंतु मान का उदय काल अंतर्मूल तक चलेगा और उसका उपशम होने का काल भी अंतर्मूल तक चलेगा। जो सारा प्रोसेस क्रोध में हुआ था वही सारा प्रोसेस मान में हो जाए। ऐसे होते होते मान की प्रथम स्थिति अंतर्मूल प्रमाण स्थापन की थी, उसमें से एक आवली जिसको हम उच्चिष्ठ आवली कहते हैं वो बाकी रही। अब क्या होगा, माया के परमाणु नीचे आकर वहां निषेक रचना होगी। जैसे गुणित प्रमाण जिस रूप में वो निषेक थे वैसे इसके भी बनेंगे, अब माया के बने। अब वो मान के नवक समय प्रबद्ध भी बाकी है, उसकी उच्चिष्टावली नीचे है। उच्चिष्टावली प्रथम स्थिति में है, नवक समय प्रबद्ध द्वितीय स्थिति में पड़े। नहीं समझा, हमने बीच में अंतर किया था। अब मान के बारे में बता, संज्वलन मान की प्रथम स्थिति तैयार की थी, वो गलते 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 उच्चिष्टावली बाकी रही, कहाँ, पहली स्थिति में है। और जो बंधे हुए परमाणु कहाँ जाते हैं, द्वितीय स्थिति में। तो नवक समय प्रबद्ध कहाँ पड़े हैं, द्वितीय स्थिति में, और उच्चिष्टावली कहाँ है, उदय के सम्मुख वाली है। अब माया के परमाणुओं से निषेक रचना तैयार हो जाती, वही स्टोरी सब अभी माया में हो जाएगी। माया के जो दो माया है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, वो संज्वलन माया में ही चले जाएंगे संक्रमित होकर, कुछ तो अपने रूप से उपशमित होने। तीनों ही माया है वो अपने रूप से उपशमित तो होती होती है, उसका अनुपूर्वी रूप से जिसमें संक्रमण होना है वो भी होता रहता है। उच्चिष्टावली का एक एक समय तो माया रूप होकर उदय में आएगा, और वो नवक समय प्रबद्ध जो था मान का वो भी उपशमित हो जाएगा अपने रूप से। नहीं होती उदीर्णा, होती उसी की जिसका उदय होता है। क्या कहा, जिसका उदय है उसी की उदीर्णा हो सकती है। इसका और इसकी उदीर्णा होने के लिए आगाल रुक गया है तो उदीर्णा कहाँ से होगी, ना आगाल होता है, उदयावली के ऊपर कुछ है ही नहीं तो उदीर्णा कैसे होगी। और जो उच्चिष्टावली है वो उदय ने आने वाली बात ही नहीं है, जिसका उदय नहीं उसकी उदीर्णा भी नहीं। तो यहाँ माया का उदय चलेगा और उच्चिष्टावली का एक एक निषेक माया रूप होकर उदय में आएगा, उसमें भी यही बात चलेगी।
आपने आगे कहा था कि के बाद छह आवली के बाद भी उसका उदीर्णा होगी, तो यहाँ पर माया का जब उदय होगा तो माया के बल की छह आवली उसकी उदीर्णा माया के साथ हो सकती है। छह आवली का काल होने के बाद,
छह आवली के बाद उदीर्णा हो सकती है उसकी, जो हमने देखा था ना। अब जो माया की प्रथम स्थिति अंतर्मूर्त बने तो यहाँ द्वितीय स्थिति का आकर्षण होकर कुछ तो उदयावली में भी जा रहा है, उसी को उदीर्णा कह सकते हैं हम। उपन छह अपने बंद के छह अवली के बाद वो हो सकता है, उसके पहले नहीं, ये यहाँ का कहने का प्रयोजन।
तो पुरुष ऊपर का उदीच्छा वाली वो नहीं हुई थी,
पुरुष वेद में नहीं हुई थी,
इसमें,
हाँ इसमें हो गई, क्योंकि पुरुष वेद की प्रथम स्थिति उतनी ही बनी थी जितना उसका उदय काल है।
वो लास्ट निषेक तक उदय में आया,
हाँ लास्ट निषेक तक उदय में आ जाएगा। हाँ अब देखते हैं यहाँ पर, ये माया की बात चल 191 पेज पर। उसके क्रम बाद में देखेंगे, पूरी क्रोध और पुरुष वेद सहित जो चल रहा है उसका पूरा प्रोसेस होने के बाद स्त्री वेद वाले का क्या होता है, नपुंसक वेद वाले का होता है क्या, मान माया लोभ का, वो सब बाद में देखना है। अभी क्रोध की बात पूरी की पूरी सीखनी है और बाद में ये सब उसका विचार करेंगे, अब नहीं। हाँ 191 पेज, हाँ देखो 279 की टीका। संज्वलन माया की प्रथम स्थिति में जब तक तीन आवली अवशेष रहती है तब तक अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान माया द्विक का द्रव्य संज्वलन माया में ही संक्रमण करता ही लगाया, उसके पश्चात संक्रमणावली में उनका द्रव्य संज्वलन लोभ में संक्रमण करता है। जैसे हमने क्रोध में देखा मान में लाया, वैसे ही माया में, वही वो तो सब जगह एक ही है। अब 280 की टीका। माया की प्रथम स्थिति में एक आवली अवशेष रहने पर उपशमनावली के अंत समय में एक समय कम, ये उपशमनावली के अंतिम समय का अर्थ होता है, ये माया का उदय का अंतिम समय है, बंध का भी अंतिम समय है, क्योंकि उपशमनावली के बाद वो उच्चिष्टावली आने वाली है, जिसका ना बंध होगा वहां ना उदय होगा। तो एक समय कम दो आवली मात्र नवक समय प्रबद्ध बिना अन्य सर्व माया का द्रव्य उपशमित होता है। ये अंतिम समय अंतिम उपशमने की अंतिम फाली भी उस समय उपशमित हो जाएगी। उसी समय उच्चिष्टावली का प्रथम निषेक संज्वलन लोभ के उदयावली के प्रथम निषेक में थिउक्क संक्रमण द्वारा संक्रमण करता है। आप कहेंगे यहाँ लोभ कहाँ है, उसी समय में उसकी रचना हो जाती है। द्वितीय स्थिति में से परमाणु नीचे आकर अभी लोभ की प्रथम स्थिति बन जाएगी। उसी समय संज्वलन माया के बंध और उदय की विच्छित्ति होती है। यहां तक उसका अंतिम समय है उदय का भी और बंध का, यानी बंधने में माया और लोभ दोनों बंध रहे थे और ये माया के उदय का अंतिम समय है। माया के उपशमने के अनंतर ये माया और लोभ का एक मास स्थिति बंध होता है, वो तो हमने देखा था। क्रोध के अंतिम समय में कितना था, 4 महीना। मान के अंतिम समय में 2 महीना, माया के अंतिम समय में 1 महीना। तो अभी 281 की टीका देख रहे हैं। माया के उपशमने के अनंतर संज्वलन लोभ की प्रथम स्थिति का कारक और वेदक होता है। कारक और वेदक का अर्थ समय यहाँ कुछ था नहीं, द्वितीय स्थिति में से लोभ के जो परमाणु है तो नीचे आकर यहाँ उसकी स्थिति बनेगी, रचना तैयार हो जाएगी। अनिवृत्तिकरण जीव बादर अर्थात स्थूल लोभ को अनुभवता है, उसे बादर सांप्राय कहते हैं। स्थूल लोभ का अर्थ है जो स्पर्धक रूप रचना अभी तक है यहाँ पर विद्यमान, वो स्पर्धक का ही वहाँ उदय चल रहा है और इसको स्थूल लोभ कहते हैं। इसको अभी सूक्ष्म कृष्टि जिसको कहना है या सूक्ष्म लोभ जिसको कहते हैं, वो उसमें वो कार्य अभी हुआ नहीं है, वो बादर में बाद में उसको बादर पुष्टि का यहाँ नाम नहीं लेना, यहाँ कोई बादर पुष्टि नहीं है। बादर पुष्टि होगी शपक श्रेणी में, यहाँ केवल स्पर्धक रूप से लोभ है, इसको बादर सांप्राय कहा। तो क्या होता है, कुछ आप नया शब्द डालो तो उसका फिर एक्सप्लेन भी करना है, और ये बादर पुष्टि संग्रह पुष्टि वो सारे शपक श्रेणी में सारे प्रोसेस जुड़े हैं, यहाँ वो कोई कार्य नहीं हो रहा है, सारे ही अपने रूप से स्पर्धक रूप से उपशमित हो रहे बस इतना है। और लोभ का भी यहाँ स्पर्धक किसको कहना, हमने वो वर्ग वर्गना स्पर्धक देखा था ना, यानी जैसे बंधे थे उस रूप से यहाँ बादर लोभ जिसको कहते वैसा यहाँ उदय चल रहा है। तो अनिवृत्तिकरण जीव बादर अर्थात स्थूल लोभ को अनुभवता है, अनुभवता है उसका उदय है उसका वेदक है उसको अनुभवता है, ये उसका कथन है। उसे बादर सांप्राय कहते हैं। सांप्राय का अर्थ होता है कषाय, बादर सांप्राय ने स्थूल कषाय, सूक्ष्म लोभ 10वें में होगा, उसका उदय 10वें में होगा, और यहाँ कैसा है बादर लोभ है, और एक वही कषाय है तो बादर सांप्राय। 9वें गुणस्थान को बादर सांप्राय भी कहते हैं, 10वें गुणस्थान को सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। यहाँ संज्वलन लोभ के द्रव्य का अपकर्षण करके प्रथम स्थिति में निक्षेपण करता है, यहाँ प्रथम स्थिति बनेगी, निक्षेपण करता है डालता है, इन्हें वहां निषेक रचना हो जाती है। कुछ नहीं था ना, क्योंकि माया की तो उच्चिष्टावली बाकी रही, लोभ तो था नहीं, तो उसी समय एक ही समय में उसकी निषेक रचना तैयार हो जाएगी। उसका विधान मान की प्रथम स्थिति में जैसे निक्षेपण किया था वैसे जाना। उसी समय संज्वलन माया के एक समय कम दो अवली मात्र नवक समय प्रबद्धों को जो द्वितीय स्थिति में पड़े है ना, नवक समय प्रबद्ध द्वितीय स्थिति में है, उच्चिष्टावली प्रथम स्थिति में है, पूर्वोक्त प्रकार से उपशमाता है, और एक समय कम उच्चिष्टावली मात्र माया के निषेकों का संज्वलन लोभ में क्यूब का संक्रमण होता है ना, एक एक निषेक उस रूप होकर उदय में आता है, उसी को कहेंगे क्यूब का संक्रमण। उच्चिष्टावली क्या उच्चिष्टावली, जो खाना खाते तो झूठन कुछ रहता है ना उच्चिष्ट, ऐसे अंतिम आवली बाकी रही है जो अपने रूप से उदय में नहीं आ रही है, तो उसको उच्चिष्टावली कहा। एक आवली प्रमाण निषेक, उसमें एक समय कम इसलिए लिया कि जो उदय रूप है वो तो लोभ रूप से उदय में आता है, इसलिए उसे एक समय कम भी कहने में आता है। अब देखो, अब माया का उदय मिट जाने पर यहाँ लोभ का उदय शुरू होने वाला है। अब यहाँ लोभ का उदय कब तक चलेगा? अभी रिमेनिंग हुआ गुणस्थान और दसवां गुणस्थान। अब रिमेनिंग नवे गुणस्थान में बादर लोभ है और दसवें में सूक्ष्म लोभ है। पूरा लोभ वेदक काल कितना गिनाएंगे? नवे का रिमेनिंग वो भी लोभ वेदक काल है और दसवें में वो भी लोभ वेदक काल है। यानी पूरे लोभ वेदक काल के हम तीन भाग अगर कहेंगे तो दो भाग नवे गुणस्थान में है और एक भाग दसवें गुणस्थान में। फिर से सुनना, पूरा लोभ वेदक काल कितना है? माया वेदक काल के बाद अभी लोभ वेदक काल शुरू हुआ, तो ये बादर लोभ का उदय नवे में है और दसवें में भी सूक्ष्म लोभ का उदय है। तो दसवें में जो सूक्ष्म लोभ का उदय है उसको एक भाग करेंगे तो उसके डबल दो भाग बादर लोभ का यहाँ उदय है। यानी सबके मिलकर हम तीन भाग इमेजिन करेंगे। अभी वो हीना दिखे उसका प्रकार उसका प्रमाण बताएंगे। यानी इस सबको मिलकर क्या कहेंगे? लोभ वेदक काल। लोभ वेदक काल में नवे गुणस्थान में बादर लोभ वेदक काल है और दसवें गुणस्थान में सूक्ष्म। वो सूक्ष्म क्या है, कौन करता है, कहाँ से आता है, वो देखेंगे अभी हम। अब यहाँ पढ़ते हम 200 बादर भी और सूक्ष्म भी संज्वलन लोभ के भेद है। ये जो किस रूप से है, यानी बादर और सूक्ष्म किसने कौन उसके क्यों कहा, वही अभी हम देखेंगे। अभी तक जो बंद होता था वो स्पर्धक रूप से होता था, अभी स्पर्धक की भी बात थोड़ी रिवाइज करते हैं क्योंकि वो नाम बहुत पहले सुना था ना, अभी भूल गए। बादर यानी स्थूल और सूक्ष्म यानी सूक्ष्म। तो बादर यानी जैसे मैं बादर और सूक्ष्म एक इंद्रिय भी कहते हैं ना, अब यहाँ वो वाला बात यहाँ नहीं लेनी है। यहाँ बादर यानी स्पर्धक रूप से जो लोभ है, अनुभाग स्पर्धक रूप से है और वहाँ स्पर्धक से भी अत्यंत हीन ऐसा अनुभाग तैयार होने वाला है। अभी यहाँ इस पोजीशन पर होगा, अभी तक तो क्या पोजिशन थी देखो, इसके लिए वर्ग वर्गणा स्पर्धक की बात फिर मैं उठा दी। अभी तक जो बंद हो रहा था वो कैसे हो रहा था, तो एक एक परमाणु को वर्ग कहते हैं, उसमें अपना अपना अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम 100 मानकर चल रहे हैं, 100 नहीं होते अनंत होते, मिनिमम भी अनंत है, हमने 100 माना, तो एक एक परमाणु में 100 100 100 100 है, ऐसे बहुत सारे परमाणु हैं, उनको हम निषेक जैसे जैसे निषेक में स्थिति बताते हैं, वर्गणा में हमको समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणु को एक वर्गणा में एक लाइन में लिखेंगे। ये वर्गणा के सभी परमाणुओं में अनुभाग समान है, हमने 100 100 100 100 मान लिया यहाँ तक ख्याल में। उसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद ज़्यादा अनुभाग वाले जो वर्ग है यानी परमाणु है उनको हम दूसरी लाइन में लिखेंगे, वो हो गई दूसरी वर्गी। डिफरेंस कितना है अनुभाग का? एक अविभाग प्रतिच्छेद। तीसरी वर्गणा में और एक अविभाग प्रतिच्छेद ज़्यादा है, इसे एक एक अविभाग से बढ़ते हुए वर्गणाएं कहलाती है। वो कितनी होती है? तो एक एक से बढ़ते हुए अनंत होती है। अभी 100 में हम अनंत क्या बताएंगे, तो हम कहेंगे 100 101 102 103 120 तक इमेजिन करो आप समझाने के लिए, ये हम मान रहे हैं। तो ये सभी वर्गणाओं के समूह को हम स्पर्धक कहेंगे। अब इसके बाद थोड़ा गैप होता है बीच में अनुभाग का, यानी 120 तक है ना, तो 21 22 23 वाले वाले कोई नहीं बीच में, डायरेक्ट एकदम 200 वाले अनुभाग वाले कोई वहाँ परमाणु पाए जाएंगे। तो वो 200 201 200, मान लेते 221 तक हम फिर हम गिनेंगे या 220 तक गिनेंगे, जैसे हमने 100 से 120 तक गिने, जैसे 200 से 220 तक गिनेंगे। तो यहाँ पहले वर्गणा में 100 था, पहले स्पर्धक के सर पहली वर्गणा में 100 अविभाग प्रतीक्षित, दूसरे स्पर्धक के पहले में 200 है, तीसरे स्पर्धक के पहले में 300 है, चौथे स्पर्धक के पहले में 400 है, इस तरह से इसका प्रमाण पाया जाता है। ऐसे स्पर्धक भी कितने होते थे, अनंत होते हैं। गैप ऐसे होता है, उसी लिए वहाँ से दूसरा स्पर्धक कहलाएगा। बीच वाले ऐसे कोई वहाँ पाए ही नहीं जाते वर्ग, ऐसे अनुभव वाले कोई परमाणु ही नहीं, बीच में ऐसा अंतर पाया जाता है
रियलिटी
में, तभी तो एक स्पर्धक दूसरा स्पर्धक तीसरा स्पर्धक ऐसे नाम देते हैं। रियलिटी में ऐसा ही होता है, रियलिटी में अनंतों में होता है, हम आपको छोटी संख्या में बताएंगे। तो ऐसे जो अनंत स्पर्धक है, यानी सबसे नीचे का, जो हमने सबसे नीचे का मिनिमम हमने 100 माना था, और 100 से लेकर 120 तक वर्गणाओं का समूह वो सबसे जघन्य स्पर्धक था, उससे वो उत्कृष्ट स्पर्धक तक अनंत सारे स्पर्धक पाए जाते हैं। यहाँ तक बात ख्याल में आई? यानी ये सब कैसे स्पर्धक रूप से है, यानी कोई भी परमाणु 100 अविभाग प्रतिच्छेद से कम वाला यहाँ था ही नहीं, वो तो मिनिमम मोस्ट था। यानी अभी कितना भी अनुभाग कम क्यों ना हो, वो तो उसके वो पहला स्पर्धक तो वो पहली वर्गना तो 100 अविभाग वाली है, यानी जो मिनिमम जो हम कहेंगे जघन्य में जघन्य जितना हो सकता है वो अनुभाग के वो वर्गना से स्टार्ट होगा, उसके कम अनुभाग वाले कोई परमाणु सत्ता में एग्जिस्टिंग नहीं है। यहाँ तक बात काल में। अब यहाँ सूक्ष्म लोक होता है ना, क्या होता है ये सब हम अभी हमको पढ़ना है, ये अपनी भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अभी तक स्पर्धक रूप से रचना थी, यानी वर्गणाओं के रूप में वहाँ पाए जाते हैं, वर्गणा वर्गणा एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा में एक अविभाग प्रतिच्छेद का डिफरेंस था। अब जैसे हमने देखा था कि निषेकों में, निषेक तो स्थिति को बता दे, ऊपर के निषेकों के परमाणु नीचे आते ऐसा जो कहते हैं, अब केवल अनुभाग को इमेजिन करो, वो निषेकों को भूल जाओ, अब केवल इतना ख्याल में ले कि कुछ वर्गणाओं में कम अविभाग है, उसके ऊपर ज्यादा है, उसके ऊपर ऐसे अनेक स्पर्धक है। यानी यहाँ वर्गणा वर्गणा इमेजिन करना, उसमें केवल वो स्थिति की बात यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ मात्र अनुभाग की बात है, नीचे के यानी कम अनुभाग, ऊपर के यानी अधिक अनुभाग, ये केवल अनुभाग की अपेक्षा नीचे ऊपर कह रहे हैं। यहाँ वो सत्ता वाले द्वितीय स्थिति पहली स्थिति वो कुछ नहीं ख्याल में लेना, यहाँ उसकी अपेक्षा क्या है, मात्र उसका अनुभाग कितना है, इतना ही यहाँ बात हो रही है। तो अब यहाँ से जो स्पर्धक रूप से जो थे, उन सभी स्पर्धक यानी सभी वर्गणाओं में से कुछ परमाणु अपना अपना अनुभाग कितना घटता है, कितना अनंत गुना घटता है, तो मिनिमम जो हमने 100 माना था ना, जो मिनिमम जो कुछ वर्गणा होगी उसके भी अनंतवे भाग प्रमाण ऐसा अनुभाग घटकर वहाँ कृष्टियाँ बनती हैं। अब कृष्टि किसको कहना, वर्गणा में एक एक वर्गणा के प्रति एक एक का डिफरेंस था, कृष्टि ऐसी रचना होती है, इतना अनुभाग घट जाता है, एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में अनंत गुना का डिफरेंस हो जाता है। यानी वर्गणा के नीचे हम ऐसे मानते हैं यहाँ इतनी वर्गणा थी, अब नीचे ये कृष्टियाँ बनी, तो ये जो जघन्य वर्गणा जो हमने 100 मानी थी उसके भी अनंत विभाग प्रमाण ये ऊपर की कृष्टि होती है, ऊपर की पहली कृष्टि से नीचे दूसरी कृष्टि उसके अनंत विभाग प्रमाण, तीसरी कृष्टि उससे अनंत विभाग प्रमाण, चौथी कृष्टि उसके अनंत विभाग प्रमाण, ऐसी कृष्टियों की रचना तैयार होती है। पहले स्पर्धक रूप थे, जैसे निषेकों में हम ऊपर के निषेकों में से परमाणु नीचे आते ऐसा देखते हैं, अभी वो निषेकों को भूल जाओ, अब मात्र अनुभाग की बात कर रहे हैं, सभी निषेकों में ऐसे अनुभाग पड़े, सभी निषेकों में ये कृष्टियाँ तैयार हो जाएगी। कृष्टियाँ तैयार होगी यानी क्या, जो जघन्य में जघन्य अनुभाग वाले जो कोई परमाणु थे उससे भी अनंत गुणाहीन ऐसे वहाँ पर परमाणु तो सत्ता में है, वही परमाणु है, परमाणु नए तैयार नहीं होने वाले, पर उनका अनुभाग इतना घटेगा कि हम उन्हीं परमाणु पर कृष्टि कहेंगे। जो पूर्व में वर्गणा और स्पर्धक रूप से पाई जाती थी उसमें कुछ परमाणु अपना अनुभाग घटाकर अभी उन परमाणुओं के नाम क्या हो गए, कृष्टि। कृष्टि इतना जो अनुभाग इतना हीन हो गया है तो उसको कृष्टि कहने में आता है। ऐसे ही कृष्टि करने का कार्य चलेगा। अनुभाग वर्गणाओं का समूह नहीं है, जिस स्थान पर वर्गणा थी उसके स्थान पर हम कृष्टि कहेंगे। अभी केवल यहाँ लोभ में ही हो रहा है इसलिए इसमें स्पर्धक वगैरह नाम नहीं देंगे, केवल वो उसकी कृष्टि में इतना ही बताएंगे। वो वर्गणाओं के या कृष्टियों के समूह वो सारा क्षपक श्रेणी में बहुत बड़ा झमेला है तो उसकी बात नहीं है यहाँ पर, केवल यहाँ कृष्टियाँ तैयार होती है बस इतना ही लेना है। और वो मात्र लोभ में होती है, क्षपक श्रेणी में तो सभी क्रोधमान माया लोभ सभी में वो सभी कृष्टियाँ बनेगी उसमें। तो भाई आपकी जो बताई हुई बादल कृष्टि सूक्ष्म कृष्टि सब ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। यहाँ तो अभी लोक वेदक काल शुरू हुआ है तो स्पर्धक रूप से लोक का वेदन चलेगा नवे गुणस्थान में। तो पहला भाग तीन भाग किए ना, नवे गुणस्थान में दो भाग है और दसवा गुणस्थान में एक भाग है। तो यहाँ तो लोक का वेदक तो चल ही रहा है और दूसरे भाग में आएगा तब ये कृष्टियों का कारक होगा। कारक यानी कृष्टियों का करने वाला, कृष्टिया रूप से बनेगी रचना यानी स्पर्धक है कुछ कृष्टि रूप से हो जाएगी और फिर वो कृष्टिया जी नीचे आ जाएगी उसकी प्रथम स्थिति बनेगी उसका वेदक हो जाएगा। यहाँ गुणहानि नहीं शब्द, यहाँ गुणहानि शब्द नहीं है, वो गुणहानि बात डिफरेंट है, उसकी बात अलग है। अब सब पढ़ेंगे, अब ये सब कृष्टिया बनने का कार्य वो ऊपर चलेगा जहाँ उपशमित होने का, कुछ तो उपशमित हो गई। अभी तो हम वो तीन भेद करते उसके बाद पहले पढ़ेंगे कृष्टिया क्या होती उसका अंदाजा थोड़ा लिया है। सुबह में तो ये विषय चलेगा, अभी तो ये जो लोभ वेदक काल है नवे गुणस्थान में कुछ भाग है और दसवें गुणस्थान में कुछ भाग है उसके जो तीन भाग है उसकी चर्चा अभी करेंगे।
जैसे भी अपने साथ के अनंत अनंत बात करके करते
सभी स्पर्धकों में से सभी वर्गणाओं से, जैसे हमने देखे थे अपकर्षण होता है तो सभी निषेकों में से परमाणु स्थिति को घटाकर नीचे आते हैं। अभी हम अनुभागों की अपेक्षा जितने स्पर्धक हैं सभी स्पर्धकों में से कुछ कुछ परमाणु अपना अनुभाग घटाकर कृष्टि रूप परिणमित हो जाएंगे, इस तरह से उसका अर्थ देना। अब पहले हम ये 282 की टीका पढ़ते हैं, पेज नंबर 192।
इसको सारी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अनुभाग अब 20 स्थान गत है और फिर 20 स्थान गत में से घटते घटते वो एक स्थान गत
नहीं, अभी स्थान गतित कुछ नहीं है, वो बहुत अभी वो तो कहाँ का कहाँ है, वो तो बादल है सब। अभी अपनी भाषा में कुछ नहीं कहो, अभी जो यहाँ अभी तीन भाग है उसकी बात पहले सुनो, जब यहाँ से हम कृष्टि का वर्णन पढ़ेंगे तो वो बात और क्लैरिटी में आ जाएगी। हमने तो अपनी भाषा में थोड़ी उसके यानी वो अत्यंत हीन अनुभाग वाले बन जाते हैं। परमाणु में जो कृष्ण अनुभाग था उसी में से कुछ परमाणुओं का अनुभाग इतना घटता है उन्हीं को हम सूक्ष्म लोक कहेंगे, बस इतनी बात है। अब यहाँ पेज नंबर 192 की गाथा, ये सॉरी टीका, माया उपशमन के अनंतर समय से लेकर, उसकी उपशमना पूरी है उसका उदय और बंद रुक गया है, अब ये लोक का उदय और बंद चलेगा। अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक बादर लोक का वेदक काल है, यह उसका उदय किसका चलेगा, बादर लोक का, क्योंकि वो बादर सांप्रदायिक अनुष्ठान है, बादर लोक का उदय अंत तक चलेगा। उसके पश्चात सूक्ष्म सांप्रदाय के अंत समय तक सूक्ष्म लोक का वेदक काल है, सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान का ही नाम है और वहाँ सूक्ष्म लोक का उदय होगा। ये सूक्ष्म लोक यानी वो कृष्टि वाला लोक, दोनों मिलाने पर लोक का वेदक काल होता है। ये दोनों को मिलाकर कहेंगे ये लोभ वेदक काल है। लोक वेदक काल में 2/3 है वो बादर लोभ है और 1/3 है वो सूक्ष्म लोभ का वेदक काल। यह लोभ वेदक काल अंतर मुहूर्त मात्र है, अब मैं आपको मेरी भाषा में कुछ संख्याएं समझाने वाली हूँ। अंतर मुहूर्त के लिए मान लो 1000 समय का है, मान लो, तो कहते ये अंतर मुहूर्त मात्र है, उसको संख्या का भाग देकर, संख्या के भाग के लिए 10 समझ लो, मान लो, तो 1000 को 10 का भाग दिया, एक भाग की वैल्यू 100, एक भाग बिना बहुभाग कितना हुआ 900, ये तो पहली दूसरी क्लास का है ना, 900, एक भाग बिना बहुभाग के 3 का भाग देकर समान भाग करो, 300 300 300, तो 9वें गुणनखंड में 2 भाग और 10वें में 1 भाग होने वाला है, सब में बेसिकली 300 300 हमने बांट दिए, एक एक समान भाग 3 जगह स्थापित करना, 300 300 300 हमने स्थापित किए, ये 300 मैंने अपनी ओर से समझाने के लिए संख्या बताई, वहाँ 300 से कुछ मतलब नहीं है। अवशेष एक भाग को 900 बांट दिए, अवशेष कितना बचा 100, उसको फिर उसी संख्या का भाग दो 10 का, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ 10, ये एक भाग हुआ और बहुभाग 90। अब ये 90 ने बहुभाग को प्रथम समान भाग में मिलाना, कितने हो जाएंगे, पहला समान भाग 300 प्लस 90, 390 हुए। बादर लोक वेद काल का प्रथम अर्धभाग होता है, यानी 9वें गुणनखंड में 2 भाग है, 2 भाग 9वें गुणनखंड में, 1 भाग 10वें में है, तो पहला भाग कितना है, हमने मान ले कि 3 सब मिलकर 1000 समय है, तो ये 390 समय यहाँ हो जाएगा। अब दूसरा भाग, पुनश्च अवशेष एक भाग को 10 बचे थे, 90 हमने यूज किए, 10 बचे थे, उसको फिर 10 का भाग दे दो, संख्या का भाग देकर बहुभाग दूसरे समान भाग में मिला, 300 प्लस 9, यहाँ 390 हुए, ये 309 हो गए, और वो एक बचेगा वो इसमें डालो, 301 हो गए, यानी 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, 390 309 और 301, समझ में ना, किसका भाग दो क्या करो, ये अपनी भाषा में समझ लो, इतना समझ में आया बहुत हो गया। बहुत छोटा है, आप कह रहे 9वें गुणनखंड से 10वें गुणनखंड, अभी 9वें गुणनखंड का संख्या बहुभाग जाने के बाद तो ये सब अंतरकरण आदि सब हुए थे, उसमें लोक वेदक काल कितना छोटा होगा, और वो लोक वेदक काल दोनों मिलकर 390 और 309, और वो तो केवल 301, यानी 10वें गुणनखंड का काल कितना छोटा है उसके सामने, पूरे 9वें के सामने कितना छोटा है, इसलिए उसको संख्या द्वारा भाग इतना ही कहते हैं। हाँ, लोग के भी जो इतना छोटा है, तो पूरे 9वें के कितना छोटा हो, ये कहना चाहते हैं। हाँ, पुनश्च ये हो गया, यह बादर लोक वेदक काल का द्वितीय अर्ध होता है, 9वें गुणस्थान का ये लास्ट पोर्शन है, ये पहला अर्धा, ये दूसरा अर्धा, वो बादर लोक के अर्धा आधे दो हो गए। यह सूक्ष्म कृष्टि करने का काल है, क्या कहा, 9वें गुणस्थान में बादर लोक का वेदक है, ये दो बादर लोक के वेदक 9वें गुणस्थान में होते हैं, और ये सूक्ष्म लोक का वेदक यानी उदय वाला 10वें गुणस्थान में होगा, तो सूक्ष्म लोक आया कहाँ से, तो यहाँ तो बादर लोक यानी स्पर्धक रूप से ही वेदन चल रहा था, उसी समय उपशमना समय जो कुछ हो रहा था, संक्रमण तो नहीं होता है, उपशमना चल रहा है, और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोक संज्वलन लोक में जाएगा, वो बढ़ेंगे अभी हम। इस जो दूसरा भाग है वहाँ क्या हो रहा है, ये कृष्टि करने का कार्य चलेगा, कृष्टि कहाँ हुई, द्वितीय स्थिति में बनी, कृष्टि कहाँ बनी, दूसरे द्वितीय स्थिति में, जहाँ पर ये लोक के बादर लोक के परमाणु पड़े थे उसमें से कुछ तो कृष्टि रूप हो जाएंगे, कुछ अपने रूप से उपशमित हो जाएंगे, ये बात वहाँ चलेगी। अब यहाँ पढ़ते थे, देखो नीचे से दूसरा करेगा, इन दोनों को मिलाने पर, यानी हमारी भाषा में 390 प्लस 309 दोनों को मिलाने पर लोक वेदक काल के दो तीसरे भाग से कुछ अधिक, यानी दो तृतीयांश से कुछ अधिक, ये समझ में आती है उनकी भाषा, अपनी भाषा में हम समझना चाहते हैं, प्रमाण बादर लोक वेदक काल है, यानी टोटल कितना हुआ 1000 में से 699 तो इसके हो गए, 390 प्लस 309 इससे एक आवली अधिक बादर लोक की प्रथम स्थिति है। आवली अधिक क्यों? वो उच्चिष्ठावली रूप से रहने वाली है, इसलिए आवली अधिक उसकी प्रथम स्थिति बनी। बादर लोक यानी जो स्पर्धक रूप से है वो नीचे आकर उसकी प्रथम स्थिति इतनी बनी कि जो दो तिहाई जो है जो बादर लोक रूप से उदय में आने वाले है प्लस एक आवली, इतनी उसकी लोक की प्रथम स्थिति बनी। लोक वेदक काल के तीसरे भाग से कुछ अधिक प्रमाण बादर लोक वेदक काल का प्रथम अर्ध है, जिसको हमने 390 कहा था, ये तो नेचुरल है। पूरे लोक वेदक काल का 1/3 से कुछ अधिक, नहीं समझे, 1000 माना था हमने, पूरा लोक वेदक काल 1000 माना था, तो 1000 का 1/3 कितना होगा, 333 तो होगा, उससे कुछ अधिक है ना, ये पहला अर्ध। लोक वेदक काल कहने से पूरा लोक वेदक काल लेगा, 9वें और 10वें का मिलकर उसको कहेंगे लोक वेदक काल। ये लोक वेदक का प्रथम अर्ध है, 9वें गुणस्थान के जो दो भाग किए हैं उसमें से पहला उसको प्रथम अर्ध कहा। इसे अर्थ संदृष्टि द्वारा प्रकट जानते हैं। जो एक भाग अवशेष रहा था उसके तीसरे समान भाग में मिलाने पर, जो एक भाग अवशेष रहा, जो एक संख्या अवशेष है, 10 को एक का भाग दिया था और 9 हमने दूसरे भाग में मिलाए थे, अब बचा एक, तो एक हमने 300 में मिला दिए तो 301 हो गए। तीसरे समान भाग में मिलाने पर सूक्ष्म कृष्टि का वेदक काल है, ये जो 10वें गुणस्थान का जो वेदक काल है जहाँ तक उसका उदय चलेगा वो उसका वेदक काल वहाँ पर होगा। वही सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान का काल जानना, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में सूक्ष्म लोक का उदय है। यहाँ बादर लोक वेदक काल के प्रथम अर्ध के अंत समय में स्थितिबंध संज्वलन लोक का तो पृथक्त्व दिन प्रमाण है। अभी हमने दो भेद किए लोक वेदक के, अंतिम बंध तो लोक वेदक के अंत में होगा, बादर लोक के अंत में, 10वें गुणस्थान में कोई लोक का बंध होने वाला नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म लोक के उदय में लोक का बंध नहीं होता है, ये हमने बहुत बार देखा है, इनको मालूम है सब। 10वें गुणस्थान में मोहनीय नहीं बनता है, मोहनीय का बंध 9वें तक ही है और 9वें के अंत में बादर लोक का बंध होगा, वहाँ बादर लोक का उदय है तो बादर लोक का बंध होगा वहाँ पर। तो वहाँ अभी दो अर्ध किए ना, ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, तो फर्स्ट हाफ के अंत में बंध कितना है, पृथक्त्व दिन यानी कुछ दिन प्रमाण, मोहनीय का बंध कुछ दिन प्रमाण है। जब माया का बंध रुक गया था तब कितना हुआ था, एक दिन, वो घटते 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 कितना हुआ, कुछ दिन। और अन्य कर्मों का पूर्वोक्त क्रम सहित पृथक्त्व 1000 वर्ष प्रमाण होता है, अभी भी कुछ 1000 वर्ष है जिसको हम संख्या 1000 वर्ष भी कहेंगे। अब 283 संज्वलन लोक की प्रथम स्थिति के प्रथम अर्ध को पूर्वोक्त प्रकार से व्यतीत करके, पूर्वोक्त प्रकार यानी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान जो लोग है वो संज्वलन लोक में संक्रमित होगा, संज्वलन लोक किसी में भी संक्रमित नहीं होने वाला, वहाँ उसका उपशमने का कार्य भी चल रहा और वहाँ पर उसका उदय भी चल ही रहा, वो जो कुछ आकार प्रत्याघात वो सब जो पहले जैसे बताया वैसी बात यहाँ पर भी चलेगी, पहले अर्ध की बात तो चलेगी। अब ऐसे द्वितीय अर्ध के प्रथम समय में, अभी दूसरा हाफ चालू हो गया, उसके प्रथम समय में संज्वलन लोक के अनुभाग सत्व में, अनुभाग सत्व का अर्थ है सत्ता में जो वहाँ परमाणु पड़े हैं उसका जो अनुभाग है उसको अनुभाग सत्व कहते हैं, जो नया बनता है उसका नाम है अनुभाग बंध और जो सत्ता में पड़ा है उसको कहेंगे अनुभाग सत्व। तो संज्वलन लोक के अनुभाग सत्व में अपकर्षण द्वारा सूक्ष्म पुष्टि करता है, यहाँ जो अपकर्षण है वो मात्र अनुभाग का अपकर्षण समझना, यहाँ स्थिति की कोई बात नहीं है, यानी वो तो ऊपर के नीचे यानी वो निषेकों को इमेजिन कर रहे थे, अब तक वो बिल्कुल नहीं सोचना, यह मात्र प्रत्येक निषेक में जो स्पर्धक पड़े हैं सारे, उन स्पर्धकों के कुछ परमाणु पृष्ठी रूप से होने वाले हैं।
उस पृष्ठी का नाम क्या है, बादर या
सूक्ष्म? ये सूक्ष्म ही होगी डायरेक्ट।
और बादर कैसे तैयार हुआ पहले?
बादर स्पर्धक में से सूक्ष्म पृष्ठी तैयार होगी। अभी तक स्पर्धक थे, अनुभवहीन हो जाएगा, अत्यंत हीन हो जाएगा।
कैसे बादर?
बादर स्पर्धक रूप को ही बादर कहते हैं। यानी मिथ्या तो गुणस्थान से लेकर सारे बादर सांप्राय वाले ही हैं। हाँ, नवे गुणस्थान के अंत तक सारे जीवों को बादर सांप्राय ही कहेंगे।
ये पुष्टि रचना नाम यहाँ पर ही मिलेगी?
हाँ, यहाँ पर पुष्टि की रचना होती है। कर्मों में उपशम श्रेणी में पुष्टि की रचना यहाँ होती है, बस इतनी।
उसके पहले भी अनुभाग घटता रहता है?
घटता, पर वो कभी स्पर्धक रूप से ही घटता रहा, कभी भी जघन्य वर्गना से नीचे कुछ अनुभव गया ही नहीं है, फिर भी अनंत स्पर्धक पड़ेंगे वहां पर। लता भाग वाले भी जो क्यों ना हो, उसमें भी अनंत अनंत स्पर्धक है वहां पर।
जो अनुभव कांडगार पहले होते थे, तो उसमें तो जो मैक्सिमम अनुभव थे वो घटके से नीचे वाले में
स्पर्धक रूप ही रहे थे। पहले अनुभाग इतनी बार घटा है, फिर भी वो स्पर्धक रूप से ही रहे। कभी जो पहला जघन्य स्पर्धक उसके नीचे के कोई अनुभव उसमें नहीं हो, और कोई एक स्पर्धक में आ मिले ऐसा भी नहीं है। उसके भी इतने बार अनुभाग कांडक हुए, फिर भी स्पर्धक आनंद रहेगी वहां पर भी। यानी वो उसके ओरिजिनल कितने अधिक हो गए, इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। कितनी बार अनुभाग कांडक घात होते आए हैं, और अनंत गुणा अनुभाग घटता गया है इतनी बार, फिर भी अभी तक पुष्टि की रचना नहीं हुई, अब जाके हो जाए। यहाँ कांडघात नहीं हो रहे, यहाँ पुष्टि का कारक है। वो कांडघात बात अलग थी, यहाँ डायरेक्ट इसमें से कृष्टियां होंगी। अभी देखिए यहाँ पर देंगे, संज्वलन लोक की प्रथम स्थिति के प्रथम अर्ध को पूर्वोक्त प्रकार से व्यतीत करके, अभी द्वितीय अर्ध के प्रथम समय में, यानी बादर लोक वेदक का ये सेकंड हाफ है, नवे गुणस्थान ही चल रहा है। उदय किसका चलेगा? बादर लोक का। और जो द्वितीय स्थिति में स्थित परमाणु है उसमें सूक्ष्म पुष्टि करने का कार्य होगा। प्रथम समय में संज्वलन लोक के अनुभाग सत्व में अपकर्षण द्वारा सूक्ष्म पुष्टि करता है, उसका विधान, उसका प्रोसेस यहां बताएंगे। देखो अभी थोड़ा पढ़ते हैं, सुबह तो ये और विस्तार से भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी लास्ट एकदम लेक्चर है ना, अंतिम पार्ट।
थोड़ा लोग रखो
यानी इसको अभी कृष्टि कारक कहते हैं। बादर लोक का वेदक है पर कृष्टि करने वाला है। संज्वलन लोक के अनुभाग सत्व में, अनुभाग सत्व में सभी जो सत्व किस रूप, यानी निषेकों में जो परमाणु पड़े हैं उनमें अपना अपना अनुभाग पड़ा है सर्वत्र, उसको अनुभाग सत्व कहेंगे। उसमें जघन्य अनुभाग सहित जो परमाणु, वो जघन्य अनुभाग सहित परमाणु एक लाइन में हमने रखे थे, उसको जघन्य वर्गना नाम दिया, याद है ना? मिनिमम पॉसिबल अनुभाग वाले परमाणु, उसमें अनुभाग के अविभाग प्रतिच्छेद जिसको हमने सौ माना था, उसके यथार्थ में उस जघन्य में जघन्य जो वर्गना है उसमें जो परमाणु है उसमें अविभाग की प्रतिच्छेद कितने हैं? जीव राशि से अनंत गुना है। अब उसमें वर्गना वर्गना प्रति एक एक बढ़ा, फिर वो तो अनंत वर्गना का एक स्पर्धक हुआ, फिर उसके दूसरे स्पर्धक में उससे दो गुना हो गए, तीसरे तीन गुना ऐसे स्पर्धक, यानी कितना कितना उसमें अनुभाग होगा, इसकी इमेजिन करो। मिनिमम भी अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद यानी अनुभाग नापने का ये माप यूनिट है, कर्मों की शक्ति नापने का ये यूनिट है। इस मिनिमम जो पॉसिबल छोटे में छोटा यूनिट, इसको जघन्य वर्ग कहते हैं। एक परमाणु को जघन्य वर्ग कहा, इसमें मिनिमम अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। इतने इतने अविभाग प्रतिच्छेद सहित जितने कर्म परमाणु रूप वर्ग पाए जाते हैं उनके समूह का नाम प्रथम वर्ण है। प्रथम ही नीचे वाली, नीचे से ऊपर पहली दूसरी तीसरी ऐसा कहेंगे। फिर से जिसको हमने 100 100 100 100 नंबर वाले सब परमाणु को एक लाइन में लिखा था उसको वर्गना नाम दिया था। यही बात यहाँ बता रहे कि मिनिमम पॉसिबल अविभाग प्रतिच्छेद वाले जो परमाणु है उसको वर्ग कहेंगे, और वो सारे समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले जो वर्गों का समूह है उसको हम वर्गना कहेंगे। इसी को जघन्य वर्गना या प्रथम वर्गना कहने में आता है। संज्वलन लोक के सत्तारूप सर्व परमाणुओं को अनुभाग संबंधी, अभी ये तो इसमें कितने परमाणु है उसका ये गणित है, उसकी बात भूल जाओ। जैसे हमने निषेकों में रचना करते हैं पहले निषेक में ज्यादा परमाणु ऊपर कम होते हैं, ऐसे यहाँ वर्गणाओं की अगर हम रचना करेंगे तो जो कम अनुभाग वाले यानी नीचे की वर्गणा है उसमें परमाणु अधिक होते हैं और ऊपर वो हीन होते हैं। अब ये वो चय क्या है गुणगान क्या है वो यहाँ अभी हम उसको नहीं देखते हैं। यहाँ जो देखो नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 इसमें से द्रव्य को अपकर्षण करके अनुभाग की सूक्ष्म पुष्टि करता है। देखो हमने निषेक रचना जब एक लाइन में देखी थी और अपकर्षण होता है तो ऊपर के नीचे आता है वगैरह वगैरह, वो स्थिति की अपेक्षा बात थी, स्थिति की अपेक्षा ऊपर नीचे था उसमें तो समय बताते थे। अनुभाग की अपेक्षा भी ऐसे ही रचना करना निषेक जैसी, नीचे की जो निषेक जैसी रचना है उसको हमने वर्गना कहा। ये पहली वर्गना दूसरी वर्गना ऐसे जितने स्पर्धक है उनकी सभी वर्गना एक लाइन में लिख दो तो कहेंगे ऊपर से अनुभाग घटकर नीचे के वर्गना में वो परमाणु मिले, ऐसा उसका अर्थ होता है। जैसे हमने वहां निषेकों में देखते थे ऊपर के वर्गनाओं में से ऊपर के सभी निषेकों में से द्रव्य नीचे आता है और नीचे आकर मिलता है। अब स्पर्धकों में भी ऐसा इमेजिन करो, सत्ता में जितने परमाणु है उसको अनुभाग की अपेक्षा उसकी लाइन बना, यहां कौन से निषेक में उसकी बात भूल जाओ, समझ में आते हैं बात, यहाँ केवल अनुभाग की अपेक्षा उसकी कतार लगा दो। तो ये ऊपर के जो अधिक अनुभाग वाले जो कुछ परमाणु है वो सारे अपनी जगह छोड़कर, इवन कितना नीचे आ जाएंगे जो पहली वर्गना है उसके भी अनंत गुना नीचे आकर वहां कृष्टि बनेगी। ये कैसे बनेगी कितनी बनेगी उसकी सब चर्चा आएगी अभी, जगन्य के बहुत नीचे आ जाएगी उसके अनंत गुणा घटकर ये नई रचना होने वाली है। अब अपना जो समय होने को आया है यहाँ नेक्स्ट पेज पर कोई मुझे बताना था
समझ सकते हैं। जैसे जगन्य वर्गणा में आपने कहा कि परमाणु के अंदर जीव राशि जितने अविभाग प्रतिच्छेद है तो फिर अभी नीचे आएंगे तो उससे कम अविभाग प्रतिच्छेद वाले होंगे,
कम यानी अनंत गुणा कम, थोड़े कम नहीं, जरा 204 पेज निकालना मैं थोड़ी करेक्शन बताती हूँ। अच्छा सुबह बताएंगे, सुबह कोई बात नहीं, मैं भले मुझे दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा, बात सही है। चलो अभी हम यहाँ इसलिए रुकते हैं, दो ही मिनट बाकी है, यहाँ कोई प्रश्न है तो पूछना, क्योंकि ये पुष्टि क्या होती है कैसे की जाती है उसकी सब रचना हम यहाँ देखेंगे, पुस्तक के आधार से भी देखेंगे और बोर्ड के आधार से भी नए फिगर्स लेके भी बताएंगे इसमें। ये हाँ जघन्य वर्गना से भी बहुत नीचे कृष्टियाँ बनेंगी और एक ही कृष्टि नहीं बनती, अनेक कृष्टि बनती, तो एक कृष्टि से उसके नीचे की कृष्टि अनंत गुना है, उससे नीचे अनंत गुना है, जैसे एक समय में असंख्यात कृष्टियाँ बनेंगी। ये सब प्रोसेस कल देखेंगे कितनी बनती है क्या बनती है। हाँ हाँ सभी स्पर्धक बोलो 2400।